नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटेंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। कहा, भारत टैक्सी सहकारी समिति चालकों को उनके काम का स्वामित्व प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में 1,500 करोड़ रुपए की विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया, उन्हें विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। नेपाल में त्रिशूली नदी में बस गिरने से 17 लोगों की मौत। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 मुकाबले में आशा मुंबई में जिम्बाब्वे का सामना वेस्टइंडीज से। अब समाचार विस्तार से। पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का प्रदर्शन राजाजी उत्सव नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज आरंभ हो गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा अशोक मंडप के पास खुली सीढ़ी पर एडविन लुटेंस की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के महान सपूत थे। उन्होंने कहा कि राजा जी का कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़ाव उनके विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीयों चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी के आदर्शों पर कार्य करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि देश की जनता राजगोपालाचारी जी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों, शोभायमान भारत की शास्त्रीय भाषा ग्रंथों में रचित महान ज्ञान परम्परा को संजोने वाले प्राचीन पांडुलिपियों से समृद्ध ग्रंथ कुटीर की स्थापना राष्ट्रपति भवन में की गयी।
आप राष्ट्रपति भवन में भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों, शोभायमान भारत की शास्त्रीय भाषाओं के ग्रंथों में रचित महान ज्ञान परंपरा को संजोने वाले प्राचीन पांडुलिपियों से समृद्ध ग्रंथ कुटीर की स्थापना राष्ट्रपति भवन में की गई। ऐसे अनेक बदलाव राजा जी के चिंतन और जीवन के अनुरूप भारतीयता पर गौरव की चेतना को आगे बढ़ाते।
इस अवसर पर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा।
द सेलिब्रेशन इंक्लूडिंग अ बुक एंड पैनल एग्जीबिशन फिल्म स्क्रीनिंग एंड अदर कल्चरल परफॉर्मेंसेस दैट आर पार्ट ऑफ द राजाजी उत्सव आर ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू अ टावरिंग लीडर। राजाजी, अ लीडर ऑफ ग्रेट करेज एंड कन्विक्शन, वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एट द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही प्रोवाइडेड लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी टू आवर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजाजी ने 1950 के दशक में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को तमिलनाडु में लागू किया था।
वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन आज इतने दिनों के बाद पाठ्यक्रम की हिस्सा बन रहा है, जिसको राजाजी 50 के दशक में मुख्यमंत्री रहते हुए तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट किया था। जो आज बाजार व्यवस्था, जिस बाजार व्यवस्था में देश आज दुनिया की चौथा बड़ा अर्थनीति बनी है, ये इस प्रकार की अर्थनीति की कल्पना राजा जी ने प्रारंभिक दिनों में किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इसराइल के साथ अपनी अटूट मित्रता को अत्यधिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि ये संबंध विश्वास, नवाचार और शांति तथा प्रगति के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि वे इसराइल की अपनी आगामी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक समिट में भारत की क्षमताओं की वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रशंसा हुई है। समिट का समापन एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री मार्गरेट अलवा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बनाए रखी जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार सोने की कीमतों पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सोने के मूल्य में आमतौर पर वृद्धि होती है और अभी तक यह निर्धारित सीमा पार नहीं कर सकी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बजट के बाद हुई बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस पहल का लक्ष्य निजी टैक्सी सेवा कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को कम करना और लाभ चालकों को दिलाना है, न कि सहकारी समिति को।
ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा, ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो।
भारत टैक्सी की अनूठी सारथी दीदी पहल का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से महिला यात्री अपनी यात्रा के लिए महिला चालकों का चयन कर सकती हैं। श्री शाह ने बताया कि भारत टैक्सी की सारथी महिलाओं को बीमा लाभ और आसान ऋण सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इस ऐप में महिला सुरक्षा के लिए विशेष उपाय शामिल किए जाएंगे।
आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे। जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी दे। इससे किसी का कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा।
केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आज लगभग 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें वीओसी समुद्री विरासत संग्रहालय, 8 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और 5 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शिलान्यास तथा बंदरगाह पर कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिल संस्कृति का प्राचीन इतिहास राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि देश का यह हिस्सा सदियों से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ प्राचीन समुद्री परंपरा को संजोए हुए है। श्री शाह ने कहा कि नई संसद में स्थित सेंगोल दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल परम्परा के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इसके लिए वाणिज्यिक उड़ानों सहित किसी भी परिवहन साधन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दूतावास ने इस वर्ष 14 जनवरी की अपनी सलाह को दोहराते हुए कहा है कि सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उचित सावधानी बरतनी होगी, विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। ईरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और मीडिया की खबरों पर नजर रखने को कहा गया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से पासपोर्ट और पहचान पत्र सहित अपनी यात्रा और आवर्जन दस्तावेजों को अपने पास रखने का भी अनुरोध किया है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर 9891281091159891281019 9891281091102 और 9899321793959 पर जारी किया है। दूतावास से cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। मैक्सिको की सेना ने कल जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टल नेता नमेसियो रूबेन ओसेग्वेरा सर्वांतेस की हत्या कर दी। इस बीच भारतीय दूतावास ने मैक्सिको के विभिन्न हिस्सों में जारी सुरक्षा अभियानों, सड़क अवरोधों और आपराधिक गतिविधियों के कारण अपने नागरिकों को परामर्श जारी कर सावधानी बरतने और घरों में ही रहने की सलाह दी है। नागरिकों से आपात स्थिति में 911 पर कॉल करने को कहा गया है। जम्मू में सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में 326 दिन तक चले संयुक्त अभियान में 7 आतंकी मारे गए। कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस अभियान को वीरतापूर्ण कृत्य बताते हुए कहा कि किश्तवाड़ के चुनौतीपूर्ण इलाके और खराब मौसम में कठिन अभियान चलाए गए। सेना ने कहा कि आतंकी सैफुल्लाह और उसके साथियों का मारा जाना क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के लिए तगड़ा झटका है। मणिपुरी फिल्म बोंग ने कल लंदन में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता। इस फिल्म में गुगुन किपगेन और बाला हिजाम ने अभिनय किया है। इसके अलावा एक्शन थ्रिलर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 6 पुरस्कार जीते। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर हुए कथित हमले की निंदा की है। संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठनों ने गुंडागर्दी का सहारा लिया है।
वामपंथी छात्र संगठन गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। वो सिर्फ नारे नहीं लगाते बल्कि वो मारपीट करते हैं। एबीवीपी के लोगों के ऊपर उन्होंने हमला करने का काम किया। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन पर पत्थरबाजी हुई है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और रास्ते में त्रिशूली नदी में गिर गई। बस में कुल 44 लोग सवार थे। लगभग 26 घायलों को बचा लिया गया है। कुछ घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है जबकि अधिकांश को काठमांडू भेजा गया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है। बस रविवार शाम 7 बजे पोखरा से 34 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी और काठमांडू जाते समय धारडिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अशांति, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता से समर्थन मांगा है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को लिखे पत्र में उन्होंने न केवल पिछले 11 वर्ष में केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और उपलब्धियों का विवरण दिया बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लिखा कि अब अगली पीढ़ी के भविष्य का मार्ग तय करने का समय आ गया है। पूर्व रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय का आज निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक मुकुल रॉय को पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज सुपर 8 ग्रुप मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना वेस्टइंडीज से होगा। मुंबई में यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल भारत को सुपर 8 के ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटेंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। कहा भारत टैक्सी सहकारी समिति चालकों को उनके काम का स्वामित्व प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में 1,500 करोड़ रुपए की विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप में सुपर 8 मुकाबले में आज शाम मुंबई में जिम्बाब्वे का सामना वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।